ओम शांति, गुड इवनिंग। इसी मेडिटेशन के आज 16वें दिन में आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम मेडिटेशन में अनुभव करने जा रहे हैं वो है रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग्स। हम सबको क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स चाहिए। हम कुछ भी करते हैं, भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमको लगता है इससे भगवान खुश हो जाएगा और वो अपनी ब्लेसिंग्स देगा, वरदान, दुआएं, ये हर किसी को पसंद है ना? लेकिन अगर हमें अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए तो सबसे पहले हमें उसका डिजर्व करना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ता है। जो पात्र होता है उसको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स मिलती ही है। जैसे आप देखते हैं, जो लायक बच्चा होता है वो कहीं भी जाता है तो माँ बाप का क्या चिंतन चलता है, वो जहां भी है उसको सफलता मिले, वो खुश रहे, है ना। मन ही मन में माँ बाप उनके लिए ऐसी चिंतन करते हैं, ये चिंतन ही, शुभ चिंतन ही उसके लिए ब्लेसिंग्स बन जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई नालायक बच्चा है, वो कहीं बाहर जाता है तो माँ बाप के अंदर क्या चिंतन चलता? चिंतन नहीं, उनके अंदर चिंता सदा बनी रहती कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये कोई गलती ना कर दे, ये किसी की कोई गड़बड़ ना कर दे, है ना, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं किसी से इसका झगड़ा ना हो जाए। तो नेचुरली वो आत्मा जो है चिंता के थॉट्स डेवलप करती है। तो हमारे प्रति, हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे माता पिता की या परमात्मा की अगर हमें ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसके लिए हमें लायक, डिजर्व करना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा ना, डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा ना? और अगर हम अपने अंदर वो धारणाएं नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम चिंता का कारण बन जाते हैं। और जो ब्लेसिंग्स हैं, आप देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमारे पास ये अकाउंट में, हमारे खाते में ब्लेसिंग्स हैं तो बड़े से बड़े पेपर, बड़े से बड़े तूफान हम सहज पार कर लेते हैं। इसलिए तो कई बार कहते हैं लोग कि इनको दुआओं ने बचा दिया, इनके पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं। उसको भाग्य भी कहा जाता है, बड़े भाग्यशाली हो आप, क्योंकि वो एक तरह से हमारा पुण्य का खाता बन जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में सदा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं ना, कि हमें हमेशा अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हम जितना हो सके ब्लेसिंग्स को अर्न करें ना। मांगने से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा ना? अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दूसरी बात, ब्लेसिंग्स हमको कैसे मिले और विशेष परमात्मा की ब्लेसिंग्स कैसे मिले, उसके लिए हमें उनके आज्ञाकारी, ओबीडिएंट बनना पड़ता है। ओबीडिएंट चाइल्ड को हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जितना जितना हम उनका कहना मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अब परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, उनकी हमसे क्या चाहना है? ज्यादातर आप देखते हैं कि जो व्यक्ति खुद जैसा होता है वही चाहना, जैसे माँ बाप होते हैं वैसी ही चाहना अपने बच्चों से रखते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे जाए। उसी तरह से परमात्मा, क्योंकि हमारे पिता हैं तो उनकी भी सदा हमारे प्रति यही चाहना रहती कि हम उनसे भी ऊंचे, श्रेष्ठ बने। एक क्वेश्चन आया है ना, कल का है, चंदन कुमार जी लिखते हैं कि मैडम हम अपने लक्ष्य को कैसे पाए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर एक हिम्मत चाहिए, दूसरी दृढ़ता चाहिए, तीसरा त्याग चाहिए। ये तीन चीजें हमारे अंदर चाहिए। सबसे पहले तो त्याग चाहिए। जैसे अगर बच्चे को अच्छे मार्क से पास आना है तो उसे कई बातों का त्याग करना पड़ता है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अगर उसके अंदर त्याग भाव नहीं तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। हो सकता है उसे घूमने का, है ना, सब लोग टीवी देख रहे हैं, सब लोग एंजॉय, उसको वो त्याग करना पड़ता है। तो बिना त्याग के हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा, अपने अंदर हिम्मत रखिए, क्योंकि जब हम लक्ष्य पे पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं, जो भी हम लक्ष्य रखते हैं, तो उसमें विघ्नों का आना नेचुरल है। तो इसलिए उन विघ्नों के आते हुए भी हम हिम्मत नहीं ना हो, ये समझ के चलें कि हमारे आगे ऐसे विघ्न आएंगे जो मुझे दिल शिकस्त डिसहार्टन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने साथ हिम्मत सदा रखें। और तीसरी बात, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जो मेरी दृढ़ता को कमजोर करेंगी। हो सकता है हम सोचे नहीं, बड़ा मुश्किल है, कुछ लोग कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है, आप ये नहीं कर पाएंगे, या अपना ही मन कहेगा, तो लेकिन अपने अंदर दृढ़ता बनाए रखें। ये तीन आपके साथी हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और ये तीनों साथी आपको मेडिटेशन से इजीली प्राप्त हो सकते हैं। तो समझती हूँ आपको अपना आंसर मिला होगा। दशरथ जी लिखते हैं, माइंड साइलेंट रखना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले साइलेंस क्या है? हम सबको मालूम है कि थॉटलेस स्टेज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई थॉट ही ना चले उसको साइलेंस कहा जाएगा। साइलेंस अर्थात कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की हलचल, परेशानी, ये सब कुछ ना हो। और ये सब बातें ज्यादातर व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन से पैदा होती है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हलचल होती है, जब हम किसी के लिए बुरा भला सोचते हैं या अपने लिए, तब हलचल होती है। जब इन विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं, एक सकारात्मक श्रेष्ठ चिंतन में रहते हैं, शुभ चिंतन में रहते हैं, तो वो मन ही साइलेंट मन होता है। उसमें शक्ति भी होती है, खुशी भी होती है। इसलिए मेडिटेशन में हम कोई ये टारगेट से मेडिटेशन नहीं करते हैं कि हम थॉटलेस स्टेज पे जाएं। हम ये अपने मन को डायरेक्शन देते हैं कि हमारे मन में सकारात्मक चिंतन चले, श्रेष्ठ चिंतन चले, हम एलिवेटेड थिंकिंग करें, पर्पसफुल थिंकिंग करें। उसी से ही मन जो है शांत होता है। और दूसरा, जो मन को चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो जब मन की पूरी हो जाती है तो भी मन शांत हो जाता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी मन की शांति ही है ना। तो मेडिटेशन से हमारा मन जो है वो साइलेंट, स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को डायरेक्शन दीजिए, तो आपका मन साइलेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ही साइलेंस है। तो जैसे हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग्स की, हमें अपने जीवन में ब्लेसिंग्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम समझते हैं कि हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें, कई बार कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी जब एकदम जैसे सक्सेस पर पहुंचने लगते हैं, तो वह कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे लिए वो पुरुषार्थ जैसे खेल हो जाता है, अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो उसमें अंदर ही अंदर अनुभव होता है कि जरूर ये मेरे कुछ पिछले जन्मों के श्रेष्ठ कर्म हैं, या मेरे ऊपर दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, कि जिसने मेरे जीवन को, मेरे लक्ष्य को इतना सहज बना दिया। तो ब्लेसिंग्स सूक्ष्म में बहुत काम करती है। हमारे यहाँ यही कहते हैं कि कुछ नहीं कीजिए, बस एक काम कीजिए, दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। और सबसे बड़ी दुआएं हैं उस परमात्मा की। और अगर उस किसी के पास उसकी दुआएं हैं, भगवान की, जिसके पास दुआएं हैं, ऑलमाइटी की दुआएं हैं, तो उसके लिए तो सफलता जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना है कि अगर हमें अपने जीवन में परमात्मा की, ऑलमाइटी की दुआएं चाहिए, तो हमें उसके उसके कहने पर चलना पड़ेगा। अब जैसे मैं कह रही थी कि जो माँ बाप होते हैं तो वह जैसे होते हैं वैसे ही अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो परमात्मा की हमारे से क्या आश है, वो हमें क्या डायरेक्शंस देते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात, वो सदा हमसे यही चाहते हैं कि हम सदा संतुष्ट रहें और सबको संतुष्ट करें। दूसरे शब्दों में, खुद भी खुश रहे, सुखी रहे और दूसरों को भी खुशी दे, सुख दे, ना दुख ले ना दुख दे, सदा सुख दे और सुख ले। अगर हम ये छोटी सी जीवन की धारणा कर ले कि हमें ना किसी को दुख देना ही नहीं है, सबको सुख देना है, तो ये जो सुख देने का हम लक्ष्य रख ले अपने जीवन का, तो उसमें हमें अपने परिवारजनों की, मनुष्य आत्माओं की और परमात्मा की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होंगी, ऑटोमेटिकली, नेचुरली, मांगने भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं कि आप स्विच ऑन कर देते हैं तो लाइट, पंखा, एसी ऑटोमेटिकली चलता रहता है, आपको और कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो अपने अंदर स्मृति का ये एक स्विच ऑन कर लीजिए कि मुझे सदा सबको सुख देना है और सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। तो आपको परमात्मा की ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग्स नेचुरल प्राप्त होंगी, ऑटोमेटिकली प्राप्त होंगी, और वो आपके लिए एक, जैसे आपका एक पुण्य का खाता बन जाएगा, आपके लिए जैसे वो एक शक्ति बन जाएगी। तो चलिए मेडिटेशन में बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि कैसे हम परमात्मा की ब्लेसिंग्स रिसीव करें। उसके लिए पहले हम अपने आप को जो परमात्मा की हमसे चाहना है उस स्मृति में, उस स्थिति में स्थित होते हैं। स्वयं को एकाग्र करें, मन बुद्धि को अलग। मन को सकारात्मक विचारों का चिंतन दे। अपने मन के मालिक बनकर, राजा बनकर, मन और बुद्धि को एकाग्र होने का डायरेक्शन दे। और अपने भीतर स्वयं से बात करें, एक सेल्फ टॉक करें। क्या मैं आत्मा सदा खुश रह सकती? क्या मैं आत्मा सदा सुखी रह सकती हूँ? बाहरी बातों के प्रभाव से मुक्त, अन्य आत्माओं के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने की क्या मुझ में क्षमता है? अवश्य है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे पास खुशी, संतुष्टता, शांति जैसे अमूल्य खजानों का भंडार, अब इन खजानों को मैं अन्य आत्माओं के प्रति, अपने परिवार के प्रति दातापन, रहम दिलपन, सदा यूज कर सकती, जो भी मेरे सम्मुख आए मेरे जीवन का यही लक्ष्य हो कि मुझे सबको सुख देना है, सबसे संतुष्ट रहना है, उसके कर्म, उसके व्यवहार से प्रभावित हो स्वयं को दुखी नहीं करना है। ये श्रेष्ठ कर्म ये श्रेष्ठ लक्ष्य मुझे परमात्मा की दुआओं के, ब्लेसिंग के पात्र बना रहा। मैं आत्मा परमात्मा की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रही हूं। परमात्मा जो रहम दिल है, सर्वशक्तिवान है, उसके वरदान मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। और मैं आत्मा परमात्मा दुआओं के खजाने से भरपूर होती जा रही हूं। परमात्मा दुआएं मुझे सिक्योर कर रही हैं, मुझे निश्चिंत कर रही हैं, क्योंकि जिसके पास दुआओं का खजाना है, पुण्य का खजाना है, वही निर्भय है, वही निश्चिंत। अपने आत्मा स्वयं से प्रतिज्ञा करती कि मैं अपने जीवन में अपने अंदर सदा ये लक्ष्य रखूंगी कि सुख देना है और सुख लेना है। दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। यही श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। ओम शांति। ओम शांति। उम्मीद करते हैं कि आप सबने भी हमारे साथ ये मेडिटेशन का अनुभव किया होगा और स्वयं को ये सकारात्मक विचार देकर, ये सकारात्मक लक्ष्य देकर स्वयं को पात्र बनाया होगा। आपको कैसा लगा? आप में क्या परिवर्तन आया? आपकी क्या अनुभूति रही? वे हमारे साथ शेयर करें तो अच्छा। बापी जी लिखते हैं, ओम शांति लिख रहे हैं। डियर डिवाइन सिस्टर जी, बापी जी ओम शांति, आपका ओम शांति हमें स्वीकार हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा भी। कि जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अपने जीवन का एक सहज लक्ष्य ये बना ले। राजकुमार जी लिखते हैं, हाउ टू जनरेट वेल्थ जस्ट बाय यूजिंग राजयोगा मेडिटेशन। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट समटाइम्स टू मच कंसंट्रेट ऑन दिस इज नॉट हेल्पफुल इन जनरेटिंग वेल्थ फॉर फैमिली। देखिए, हमारे जीवन के दो अलग लक्ष्य होते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियल ग्रोथ। और ये माना गया है कि जहां पर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वहां मटेरियल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। लक्ष्मी भी कहाँ आती है? हम लोग दिवाली पर अपना घर तो साफ कर लेते हैं ये सोचकर कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन कभी अपने मन को, अपने चित्त को साफ किया है, उसको पवित्र बनाया है? तो इसीलिए जब तक हम अपने चित्त को, अपने मन को पवित्र नहीं बनाएंगे, सिर्फ दीवारों को और जमीन को और फर्नीचर को साफ कर देंगे तो वो सफाई भी कोई सफाई नहीं है। अपने अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। इसलिए ये दोनों टारगेट्स को आप जोड़िए नहीं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, मटेरियल ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। मनोज जी लिखते हैं, विचार रिपीट होते हैं, क्या करना चाहिए? मनोज जी, अगर तो आपके सकारात्मक विचार हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके नकारात्मक विचार हैं और वो रिपीट हो रहे हैं तो एक ये विशेष साइकिल है, उस विशेष साइकिल को ब्रेक करना है। और उस विशेष साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको उस थॉट्स को, जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, मन में लॉजिक नहीं है, वो कुछ भी सोचता है, लेकिन अगर आपको उस विशेष साइकिल को ब्रेक करना है तो उसमें आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। आपको लॉजिकली उस विचार को ज्ञान से, जिसको हम विस्डम कहते हैं, अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है, तो आध्यात्मिक ज्ञान से जो आपको यहाँ से मिल रहा है, उन विचारों के विशेष साइकिल को ब्रेक कीजिए। तो आपको जब एक बार ब्रेक कर देंगे तो आपका रिपीट होना रुक जाएगा। सचिंद्र जी लिखते हैं, एंजॉय दिस। थैंक यू सचिंद्र जी। संगीता जी लिखती हैं कि रियली रिलैक्सिंग। सुरेखा जी लिखते हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। थैंक यू आपके मेडिटेशन के जो कमेंट्स आ रहे हैं। सचिंदर जी लिखते हैं, लव दिस मेडिटेशन। बिल्कुल, हमारा मेडिटेशन से प्यार होना चाहिए। संगीता जी थैंक यू लिखती हैं, क्योंकि जिस चीज में जैसे हमारा शौक होता है, जो चीज हमें प्यारी होती है, वो करना बहुत सहज हो जाता है। रूपाली जी लिखती हैं, धन्यवाद दीदी। अर्चना जी लिखती हैं, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली हेल्पफुल टू मी। अंकित जी लिखते हैं, आई हैव डन इट फर्स्ट टाइम एंड आई एम ग्लैड दैट आई फाउंड यू. थैंक यू सैया. स्नेहा लिखती है, इट वॉज सो पीसफुल. ओम शांति. थैंक यू स्नेहा. आप सबके कमेंट्स आते हैं तो हमें समझ में आता है कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं. पूजा लिखती है, वेरी नाइस. सुकन्या जी लिखती है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सोल माइंड एंड इंटेलेक्ट. इफ सोल डिटोरिएट विद द टाइम हाउ मच इंटेलेक्ट एंड माइंड. थैंक यू. कि जैसे हम बताते हैं कि सोल जो है, सोल एंड माइंड का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सोल के तीन सटल ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि और संस्कार, माइंड इंटेलेक्ट एंड नेचर. तो सोल का डिटोरिएशन जो होता है वो माइंड और इंटेलेक्ट से ही होता है. जब हमारे मन में नकारात्मक विचार और बुद्धि में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है तो सोल का डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है. जैसे कि सोने के अंदर अगर अलॉय है तो नेचुरली उससे जो भी ज्वेलरी बनेगी वो प्योर नहीं होगी. उसी तरह से अगर हमारे मन बुद्धि संस्कार में नेगेटिविटी है तो सोल भी डिटोरेट हो जाती है. ये सब आपस में गहरा कनेक्शन है. मनीषा जी लिखती हैं कि इन दिस टाइम हाउ टू बी लाइट एंड रिलैक्स्ड व्हेन आउटसाइड ऑल द नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग. टिल देन वी डू मेडिटेट. All things seems right, but after this we feel the negativity. Please guide how to be stable constantly. जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उस मेडिटेशन से हट जाते हैं तो आपके लिए आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. इसलिए हम इसको कर्म योग भी कहते हैं. सिर्फ राजयोग बैठक योग नहीं है, ये कर्म योग भी है कि कर्म करते हुए भी आप अपने अंदर ये स्मृति रखें कि आई एम अ पीसफुल सोल. इस अवेयरनेस को, जैसे आपको अपने बॉडी की अवेयरनेस, अपने फीमेल या मेल होने की अवेयरनेस, अपने संबंधों की अवेयरनेस नेचुरल रहती है, उसी तरह से मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ. जो हमारी इनेट क्वालिटीज है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं. तो जब आप उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होगा. जैसे कहाँ पर बहुत बुरी गंध आ रही होती है तो हम इंसेंस स्टिक अगर बत्ती जला देते हैं तो वो जो महक है वो चेंज हो जाती है. उसी तरह से जब हम अपने अंदर ये वैल्यूज की अवेयरनेस रखते हैं, अपनी इनेट क्वालिटीज की अवेयरनेस में रहते हैं, तो बाहरी वायुमंडल का इफेक्ट हमारे पर नहीं आता है. जैसे आप घर में एयर कंडीशन चलाते हैं, आप पूरे अपने देश को या अपनी स्टेट को या अपनी कॉलोनी को तो एयर कंडीशन बाहर से नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर को तो कर सकते हैं ताकि बाहर की गर्मी हमारे अंदर ना आए. तो वही लॉजिक हमें अपनाना है. रेनू जी लिखती हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ एंग्जायटी फियर इनसिक्योरिटी अमिड पेंडेमिक. आपके विचार हैं. अगर आप चाहें तो राई को पहाड़ बना लें और अगर आप चाहें तो पहाड़ को राई बना लें. आपके अपने विचार हैं. अगर आप टू मच इस पैनडेमिक के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपने अंदर उसको पहाड़ बना लेंगे, उस परिस्थिति को. इसलिए जितना हो सके अपने आप को ऐसे विचारों से विथड्रॉ करें, लेट गो करें, ज्यादा उसकी चिंता ना करें. अपनी सेफ्टी रखना अलग चीज है जो आपके हाथ में है. चिंता करने से कभी भी कोई परिस्थिति रुक नहीं जाती है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए. अपने आप को सेफ जितना हो सके, जो भी गवर्नमेंट के हमको आ रहे हैं उन सेफ्टी का ध्यान रखिए तो आपकी एंजाइटी कम होगी. लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, अपने आप को डाइवर्ट कीजिए. तो अभी हम फिर से मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करेंगे. तो सभी अपने आप को रिलैक्स कर लें, अपने बॉडी को, अपने माइंड को. जो भी बातें हैं, चिंता की बातें हैं, परेशानियां हैं, थोड़े समय के लिए, जैसे होता है ना अपने सर पर कोई बोझ है, हाथ में बहुत लगेज उठाया हुआ है, तो वो सारा लगेज जो आपके माइंड में है, थॉट्स के फॉर्म में ओवरलोडेड है, उसको थोड़े समय के लिए साइड कर दीजिए और अपने आप को रिलैक्स करें, रिलैक्स मोड में चले जाएं। कोई और विचार नहीं, मन को हल्का कर ले, लाइट कर ले। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने मन और बुद्धि को सेल्फ पर फोकस करें। सेंटर ऑफ द फोरहेड, आई एम अ टाइनी स्टार, आई एम अ डिवाइन स्टार, आई एम अ पीसफुल पावरफुल एंड हैप्पी स्टार। स्वयं को सोल कॉन्शियस स्टेज पे ले आए। ये सोल कॉन्शियस स्टेज हमें रिलैक्स करेगी, हमारी एंग्जाइटी को कम करेगी, हमें टेंशन से मुक्त करेगी। अपनी बॉडी से स्वयं को डिटैच कर लें, अपना माइंड बॉडी से हटा सेल्फ पर, इनेट पर फोकस कर। आई एम सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, मन बुद्धि को सोल कॉन्शियस स्टेज में स्टेबल करें, एकाग्र करें। ये एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज आपको रिलैक्स करेगी, आपको साइलेंस का एक्सपीरियंस कराएगी। क्योंकि आप हैं ही शांत स्वरूप आत्मा, इसलिए सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें। आप अपने मन और बुद्धि को साइलेंट वर्ल्ड में, सोल वर्ल्ड में, बियॉन्ड द सन मून एंड स्काई, शांति धाम, अ प्लेस ऑफ डिवाइन लाइट, वहां फोकस करें। मैं एक चमकता सितारा एक दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर है। और इस दिव्य प्रकाश में मैं लाइट रिलैक्स अनुभव कर रही हूं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स वरदान प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे। आई एम रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग्स। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहुत से लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने मन को कैसे शांत करें, एंजाइटी कैसे कम करें, कैसे रिलैक्स हों। वंदना जी लिखती हैं कि फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं 6 इयर्स से, जिस कारण मन परेशान रहता है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ कि जब घर में डिस्प्यूट का माहौल होता है तो मन में परेशानी आती ही है। तो बाहरी परिस्थितियां तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियों का हमारे मन पर प्रभाव ना आए उसके लिए अपने मन को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को बीच बीच में रिलैक्स कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी से ही आप में ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, जो आपके जीवन में चल रही परेशानियां हैं, तूफान हैं, उनका आप सामना कर पाएंगे। क्योंकि आप कहीं भाग तो सकते नहीं है, हमारे जीवन में जो भी आता है उसे हमें सामना तो करना ही है। उमा जी लिखती हैं, वेरी नाइस फीलिंग्स। थैंक यू उमा जी, आपको अच्छा अनुभव हुआ। क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, ये सोल कॉन्शियस स्टेज ही, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही हमारे अंदर से एंग्जाइटी कम होगी, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी और हम अंदर ही अंदर स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो इसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। शुरू में कम ड्यूरेशन में स्टेबल हो पाते हैं। मेडिटेशन में हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज को उसका ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाएं। मनीषा जी थैंक्स लिखती हैं, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू मनीषा, आपको बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। रेनू जी लिखती हैं कि ये प्रश्न शायद मैंने लिया था, हाउ टू गेट रिड ऑफ, और मैंने मेडिटेशन में भी और उसी का ही मैंने आंसर भी दिया, और मेडिटेशन में भी मैंने बताया कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। गायत्री जी लिखती हैं, पॉलिशिंग द सोल इज एसेंशियल, प्लीज लेट मी नो दीदी। कि जो आत्मा है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप अपने जेवर जो है उसमें अलॉय निकालते हैं तो वो खूबसूरत हो जाते हैं, उसी तरह से अपने अंदर से हम जितनी विकार जो नेगेटिविटी है उसको निकालते चले जाते हैं तो आत्मा प्योर और ब्यूटीफुल बन जाती है। जैसे सोने में से अलॉय निकालने के लिए, नेगेटिविटी जो उसके अंदर इम्प्योरिटी निकालने के लिए उसको बर्न किया जाता है अग्नि में, उसी तरह से मेडिटेशन भी एक तरह की फायर है जिससे हमारे अंदर की नकारात्मकता इम्प्योरिटी निकल जाती है। रूपाली जी लिखती हैं, थैंक्स फॉर क्लियरिंग रियल गोल ऑफ माय लाइफ। थैंक यू रूपाली जी, आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका थैंक्स कि आपको क्लैरिटी मिली। पूनम जी लिखती है, आई फील मच लाइटर, थैंक यू सो मच. थैंक यू पूनम, आपको लाइट फील हो रहा है ना? ये हम, जैसे मैं आपको बता रही थी, पूजा जी लिखती है, फीलिंग ब्यूटिफुल ऑरा एंड फील्स हैप्पी. थैंक यू पूजा, आपको ब्यूटिफुल फीलिंग हो रही है, क्योंकि फीलिंग ही सब कुछ है. इसीलिए डॉक्टर भी हमेशा पूछते हैं, हाउ यू आर फीलिंग. तो हमारी मेडिटेशन क्या का, हमारा मेडिटेशन ठीक कर रहे हैं, मेडिटेशन हम राइट कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग ही आपको बता देंगी. रेणु जी का ये प्रश्न मैं ले चुकी हूँ, तो ये फीलिंग ही आपको बता देंगी कि आप राइट पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं. क्योंकि अपने थॉट्स को मॉनिटर करना कई बार मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत हाई कॉन्शियस चाहिए होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को तो हम मॉनिटर कर सकते हैं. मोहिनी जी लिखते हैं, फीलिंग गुड एंड रिलैक्स्ड, ओम शांति स्वीति. बिल्कुल है ना, यही मेडिटेशन का आपका प्रूफ है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अगर आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो आपकी फीलिंग आपको आंसर देंगी कि वेदर यू आर. इसलिए जैसे ही आपकी फीलिंग चेंज हो, आप तुरंत अपने अलर्ट हो जाएं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. उषा जी लिखती हैं, फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू दीदी, थैंक यू. तो इसलिए अपनी फीलिंग को मॉनिटर, जहां, क्योंकि डिले नहीं कीजिए, कहते हैं ना डिले इज डेंजर. जैसे ही आपके अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग, लो फीलिंग आने लगे, तो तुरंत मेडिटेशन करें. प्राप्ति जी लिखती हैं, प्राप्ति पर, हाउ टू टैप इनटू द नेचुरल हीलिंग एनर्जी ऑफ योर बॉडी, आई मीन हाउ टू एक्सेस एक्टिवेट इट, नेचुरल हीलिंग एनर्जी ऑफ योर बॉडी. जैसे सोल, माइंड एंड बॉडी का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन होता है, जब आपकी सोल में प्योरिटी पावर आती है, तो वो बॉडी को भी उसी तरह से हील करने में मदद करती है. इसलिए, क्योंकि बॉडी तो जड़ है, आत्मा चेतन है, तो इसलिए सोल कैन इन्फ्लुएंस योर बॉडी. तो सोल को एनर्जाइज कीजिए, तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पर भी अवश्य आएगा. तो इसीलिए आप सब जो हैं, जो आज का हमने आपको लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को याद रखिएगा, और मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना प्रैक्टिस कीजिएगा, कि ताकि मैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकूं, उसका मेडिटेशन कीजिएगा. और हम सब आपके प्रति, हम सब बहनों की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं हैं कि आपके ऊपर सदा परमात्मा की दुआएं बरसती रहें, और वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स सदा आपके साथ रहें. दीपा जी लिखती है, हाउ टू मिनिमाइज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लव्ड वन, थैंक यू फॉर मेडिटेशन. अब जिससे प्यार करते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉ है, प्यार का सच्चा रूप ये होता है, जिससे प्यार करते हैं उससे लेने से ज्यादा देने का मन करता है. तो आप अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लें कि जिससे आप प्यार करते हैं उसको मुझे सिर्फ देना है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं. उससे लेना है नहीं, मुझे देना है. जब आप देने का एटीट्यूड बना लेंगे, जैसे कहते हैं ना देवता, देवता माना देने वाले, अपने जीवन में अगर आप ये एटीट्यूड उनके प्रति रखेंगे कि वो आपको से आपको कुछ दे ना दे, लेकिन मुझे सदा उनको खुशी, सुख, प्रेम देना है, तो आप अपने अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं कम हो जाएंगी, और आप फुलफिल भी फील करेंगे. इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा. कंचन जी सिन्हा जी लिखते हैं, ओम शांति दीदी, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. बिल्कुल, कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है. हम समय के करीब पहुंच गए हैं, तो अभी जो है हम यहीं पर इस सेशन को क्लोज करेंगे. उससे पहले एक और वेरी वाइज, थैंक यू सो मच मोनिका जी लिखती हैं. थैंक यू मोनिका जी आपके कमेंट के लिए. कभी आप सब जो सुना उसको अपने जीवन में लाइए, उसको अनुभव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. हमारी शुभकामना है आप ऐसे ही मेडिटेशन करते रहें और सदा खुश रहें. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं. कल फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे, नए टॉपिक, नई फीलिंग, नई प्रैक्टिस के साथ. ओम शांति.